खुदा उनके जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। कल रात छोटी बेटी कैरी मुझसे ये सवाल कर रही थी कि पापा जी मेरा एक सवाल है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वो कौन सा सवाल है। तो उसने मुझसे पूछना शुरू किया कि अब मेरा बाप कहाँ पर है। मैंने उसे कहा कि वो आसमान पर है, लेकिन मुझे बताओ कि वो आसमान पर क्या कर रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या वहां पर है, आसमानी शहर कैसा है। और मैंने दुआ करना शुरू की और खुदा से कहा कि इस जान को किस तरह उस आसमानी शहर के बारे में बताऊं जिसको खुदावन खुदा तूने तैयार किया है मुकद्दसों के लिए। और मैं आज यहां पर पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये सिर्फ सवाल कैरी के दिल ही में नहीं कि उसका बाप जो उसे जमीन पर छोड़कर उस जहां में चला गया है, जो हमसे अनदेखा है, जिसके बारे में हमें बड़ी मुख्तसर मालूमात दी गई है, आज वो कैरी का सवाल नहीं बल्कि आज बथेरे यहां पर बैठे हैं जिनके दिलों में ये सवाल है कि मर जाने के बाद क्या होता है, क्या हिसाब कब्र में होता है, आसमान पर होता है, जब यीशु आएगा तब होगा, या फिर क्या होता है। तो उसने ये सवाल मुझसे पूछना शुरू किए कल रात भी और आज सुबह भी, मेरा बाप अब क्या कर रहा होगा, वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर वो कैसे जिंदगी बसर करते हैं, वहां पर क्या निजाम, क्या तरीका है, वो कौन सा काम करते हैं जैसे हम इस जमीन पर यहां पर काम करते हैं। तो आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस सवाल के बायस परेशान हैं कि आपके जो प्यारे जो आपको छोड़कर आसमान पर चले गए हैं, और इसी बात पर हम सिर्फ यकीन करके, इस बात पर भरोसा करके मुतमिन नहीं कि वहां पर क्या होता है, कैसे जिंदगी बसर होती है, क्या हो रहा है, आज आप पर ये राज जो बाइबल मुकद्दस में वाजिया है जाहिर करना चाहता हूं। अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा गया कि हम जो सब मसीह में जिंदा किए गए हैं क्या रहे जी, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहे। तो आज मैं चाहता हूं कि हम आलम बाला और आलम रवा के बारे में बात करें, ताकि हम इसके बारे में जब फर्क जानेंगे तब हमको इत्मीनान और तसल्ली मिलेगी कि हमारे जो प्यारे हमसे जब रूठ जाते हैं, अगर वो मसीह में सो गए हैं तो आसमान पर क्या हो रहा है, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो वहां पर क्या देख रहे हैं, और उनका वहां पर वक्त कैसे गुजर रहा है। तो आज मैं चाहता हूं कि आलम बाला और आलम रवा के बारे में बात की जाए। आलम बाला से मुराद है यानी कि वो जगह जिसे बाइबल मुकद्दस में कहा गया है खुदा की हजूरी, खुदा का आसमान, खुदा की वो जगह जहां पर वो तख लगाए बैठा है, या कह सकते हैं दूसरा करंथियों 12वां बाप उसकी पहली कुछ 4 आयात को पढ़ते हैं तो पालूस रसूल हमें सिखाता है कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया और उसने वहां पर जो कुछ देखा वो कहता है कि इंसान के बर्दाश्त से और बयान करने से क्या है जी, बाहर है। सो खुदा ने जो उसे दिखाया वो उसको बड़े वजाहत से बयान नहीं करता, लेकिन जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने तजर्बा किया वो काबले क्या है जी, तारीफ के लायक है। इसीलिए जब वो आसमान से जमीन पर वापस आया तो फिलिपियों के खत को लिखते हुए कैद खाना में बैठा हुआ कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है, क्योंकि वो इस राज से वाकिफ था कि जमीन की जिंदगी से आसमानी जिंदगी क्या है जी, बेहतर है। तो मैं कैरी के सवाल पर सोच रहा था कि खुदावन किस तरह उसका मैं हौसला बढ़ाऊं। تو میں نے پالوس رسول سے بات کی تو پالوس رسول نے کہا میں بذات خود آسمان پر اٹھایا گیا اور میں تجھ کو تھوڑی سی معلومات دوں گا، اس لیے میں نے کلسیوں کے خط میں سے پالوس کا بیان آپ سب تک پہنچایا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ سو میں نے تلاش کرنا شروع کی کہ آج نہ یہ سوال کیری کا ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کا یہ سوال ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سو آج اس سے پہلے عالم بالا پر غور کریں، میں عالم روا کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیسا ماحول ہے۔ بائبل مقدس اس کی ہمیں کیا دیتی ہے جی؟ گواہی دیتی ہے۔ ہم سب نے بہت سے جنازوں پر یہ کلام سنا ہے، ہم سب نے بہت سی میموریل سروس پر یہ کلام سنا ہے۔ آج جو واقعہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں مختصر طور پر بیان کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ لوقا کی انجیل، اس کا جب ہم 16 باب اس کی 19 آیت سے 31 آیت تک پڑھتے ہیں تو یہ 13 آیات سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں، پورا منظر بیان کرتی ہیں کہ عالم روا میں کیا ہوتا ہے، عالم روا کی صورت اور وہاں پر کیسی کیفیت ہے، وہ کیسی جگہ ہے جسے عذاب ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اس کہانی سے ہم سب واقف ہیں کہ ایک دولت مند بندہ تھا، وہ مر گیا، اور ویسے ہی وہاں پر ایک غریب شخص جو لازر نام سے جانا جاتا تھا، وہ بھی وفات پا گیا۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ پہلی بات، جب کوئی مرتا ہے تو خدا کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، خدا کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر ایسا ہی لکھا ہے، میں آپ کے لیے یہ آیت پڑھوں گا 22 آیت سے، اور ایسا ہوا کہ غریب مر گیا، وہ غریب مر گیا اور فرشتے اسے لے جا کر کہاں پر لے گئے جی؟ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اور آگے ہے جی امیر آدمی کا ذکر، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا، اس نے عالم روا کے درمیان غضب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ دولت مند اس لیے دوزخ کے اس عذاب میں نہیں گیا کہ اس کے پاس دولت تھی، اس کی ایک اور وجہ تھی، اور پوری بائبل مقدس اس کی واہ شہادت دیتی ہے، نہ ہماری دولت کے باعث خدا ہم کو جنت میں یا دوزخ میں جگہ دیتا ہے، نہ ہماری تعلیم کے، نہ ہمارے خاندان کے، نہ ہم نے کیا نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا۔ سوال یہ ہے اس کی عدالت میں کہ بندہ اور بندی کا اعتقاد اور بھروسہ کس پر ہے۔ سو دولت مند کی یہ کہانی یسوع مسیح جو بیان کر رہا ہے، اس سے پکا پتا چلتا ہے کہ اس نے ابراہیم کے خدا اور بھیجنے والے مسیح کا انکار کیا۔ سو اس نے اپنی آنکھیں کہاں پر کھولی جی؟ عذاب میں کھولی، عالم روا میں کھولی، اور وہ دور سے دیکھتا ہے، اور اس کی گود میں کس کو ہے جی؟ ابراہیم کی گود میں لازر کو۔ تو پرانے عہد نامہ کے میں بہت سے ربیوں سے بات کر رہا تھا جب اسرائیل میں مجھے موقع ملا، اور بہت سے نیو یارک میں رہتے ہیں تو بہت سے ربی جو یہودی ہیں جو عبرانی زبان میں مطالعہ کرتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتائیں اس کے بارے میں بھید کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیغام یسوع مسیح نے دیا، یسوع مسیح زندہ تھا، اور پرانے عہد نامہ سے جب ہم پورے پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر یسوع کے مصلوب ہونے تک یہودی اعتقاد رکھتے تھے، یہودیوں کا بھروسہ تھا کہ ہر کوئی جو مسیح میں، جس کے آنے کا منتظر ہے، جب وہ مو جاتا تھا مر جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ عالم بالا پر ڈائریکٹ نہیں جاتا تھا، وہ سارے کہاں پر جاتے تھے؟ عالم روا میں۔ عالم روا میں سائنسدانوں کے مطابق اور یہودیوں کی تعلیم کے مطابق 3 درجے پائے جاتے ہیں۔ پہلا وہ درجہ، یہاں پر وہ قیدی فرشتے ہیں جنہوں نے نوح کے دور میں نافرمانی کی۔ دوسرا درجہ وہ ہے جہاں پر بہت سی بدروحوں کو قیدی بنایا گیا ہے جہنم کے عذاب کے لیے، اور تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر ہر ایک غیر ایماندار جو مسیح پر اس کے مصلوب ہونے کے کفارے پر یقین نہیں کرتا، وہاں ان کی روح عذاب میں جاتی ہے۔ تو ان تین درجوں میں سے ایک درجہ جسے عذاب کہتے ہیں، بائبل مقدس اس کے بارے میں تعلیم دیتی ہے۔ پرانے عہد نامہ کے جب آپ داؤد کا مطالعہ کرتے ہیں تو داؤد ایمان کی کتاب میں یسوع کے تعلق سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے مقدس کے بدن کو سڑنے نہ دیا۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں پتال کا لفظ بہت زیادہ ملتا ہے۔ داؤد خود زبور 139 میں کہتا ہے، میں چڑھ جاواں جے اسمانہ اتے تے اوتھے بھی ہے تو ہی، چاہے میں بسترا پتال میں بچھاؤں وہاں پر بھی تو موجود ہے۔ سو پرانے عہد نامہ میں جتنے بھی ایماندار تھے وہ سارے عالم روا میں جاتے تھے، لیکن عذاب کی جگہ پر نہیں بلکہ ابراہیم کی گود میں، جو ایمانداروں کے لیے سکون کی جگہ تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فرشتے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم روا کے درمیان غضب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں کھولی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس سے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر۔ یہ جملہ اس نے اس جگہ پر کہا ہے جہاں پر ہر ایک گھٹنا، آسمانیوں کا، زمینیوں کا، ایمانداروں کا، غیر ایمانداروں کا، وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ ایمانداروں کا باپ ابراہیم ہے۔ عذاب میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ تو وہی ہے، اور یہاں پر یہ ابراہیم کو دور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اے باپ ابراہیم۔ اب وہ اسے باپ کہہ کر پکارا ہے، لیکن اس کے لیے دیر ہو گئی۔ دوزخ میں بہت سے لوگ جب مسیح عدالت کرنے کو آئے گا تو بتھیرے اسے کہیں گے، اے خداوند ہم پر رحم کر، ان کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اس لیے زمین پر اس کا اقرار کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کے سرے کو پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے، وہاں پر پیاس نہیں بجھتی۔ یہ وہ عذاب کی جگہ ہے، وہاں پر پیاس نہیں بجھتی، وہاں پر بندہ جو اس کی روح ہے وہ تہائی رہتی ہے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہ وہ شولے ہیں جو ایسے ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی تصویر نظر آتی ہے کہ ایماندار جب دانیل کے واقعہ کو پڑھتے ہیں تو وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے لیکن وہ نہ جلے، لیکن غیر ایمانداروں کی روحیں آگ میں تڑپتی ہیں۔ وہاں پر آگ نہیں بجھتی، وہاں پر اس بھٹی کی آگ کم نہیں ہوتی۔ اور آگے کیا لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ سو باپ ابراہیم کی گود میں لازر تسلی پا رہا ہے، لیکن یہ امیر آدمی کیا کر رہا ہے جی، تڑپ رہا ہے۔ یہ ہے چھوٹی سی تصویر عالم روا کی۔ لیکن ہمارے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہوا، یسوع مسیح کے کفارے کے بعد اس نے مصلوب ہونے کے وقت جب صلیب پر نجات کا کام مکمل کیا تو یونانی زبان کا ایک نعرہ لگایا جاتا تھا جو رومی آج بھی لگاتے ہیں اگر وہ کہیں پر موجود ہیں، فتح پانے کے بعد، رہائی پانے کے بعد، یا کسی جنگ کو جیتنے کے بعد۔ وہ نعرہ کیا تھا، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تمام ہوا، اور یونانی انگلش میں اسے کہا گیا ہے اٹ از فنش، اور یونانی میں اسے کہا گیا ہے ٹیٹلسکا۔ اور جب وہ یہ نعرہ لگاتے تھے تو اس سے مراد تھی कि जंग खत्म होगी, हमने मैदान जीत लिया। सो यीशु मसीह ने क्या किया, जब ये नारा लगाया तो उसने वो कलाम पूरा कर दिया जिसके बारे में पत्रस से कहा था कि अब से कलीसिया पर क्या ना आएंगे जी, आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे। इसलिए कलीसिया कौन है, हर वो बंदी, वो बंदा, वो बच्चा, वो बुजुर्ग, वो खुदा का खादम, वो खुदा की बेटी बेटा जो यीशु मसीह के मुकम्मल किए हुए काम पर एतकाद और भरोसा करता है, उस पर आलमे रवाजा के दरवाजे, आलमे रवा के दरवाजे बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो आलमे रवा से निकलकर कहां पर चले गए हैं जी, आलमे बाला पर। इसीलिए यहां के बाद जब यीशु मसलूब हो गया तो पालूस रसूल बार बार कहता है कि हमारा वतन आसमान है, जमीन नहीं। तो ये थी यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले हर एक ईमानदार की हालत। तो एक हवाला आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाप उसकी 51 आयत से, जब यीशु मसीह ने सलीब पर नारा लगाया तो उसका बदन तो सलीब पर था लेकिन उसकी रूह जमीन के अंदर उस आलमे रवा में जिसे गजब की जगह है कहते वहां पर क्या कर रही थी, मनादी कर रही थी और उसको पैगाम को फैला रही थी कि खुदा का बर्रा जो पैदा इस मकसद के लिए हुआ उसने अपना मंसूबा पूरा कर दिया। मेरे साथ अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाप उसकी 51 आयत, यहां पर यीशु मसीह सलीब पर है और ये आखिरी कलमा उसने जब कहा तो क्या हुआ, और मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर दो हिस्से हो गया और जमीन लरजाई और चट्टाने तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन, ग्रामर की बात है यहां पर, उन मकदसों के जो सो गए थे जी उठे। हर मुकद्दसीन जो हाबल से लेकर किब्रिया के बेटे तक और उसके बाद जितने जिसने स्टीफनस है और बहुत से ईमानदार हैं, उन सब के जिस्म कब्रों से निकलकर यरूशलेम को जाते हैं। और क्या हुआ, पालूस रसूल इसके बारे में कहता है कि जब उसने कैदियों में आलमे रवा में जाकर मनाती की तो वो कैदियों को अपने साथ आलमे बाला पर ले गया। और जब हम पत्रस के वसीला से पढ़ते हैं तो उसने कहा है कि कौन है जो आसमान पर चढ़ा और कौन है उसके सिवा जो जमीन के नीचे उतरा और जिसने जाकर कैदी रूहों में क्या की, मनाती की। So, यीशु मसीह ने जब कहा कि कलीसिया पर आलमे रवा के दोजक के दरवाजे गालब नहीं आएंगे, वो उनको नहीं रोकेंगे, तो अब जब कोई ईमानदार मरता है तो वो कहां पर जाता है जी, सीधा तीसरे आसमान पर। किसने आसमान है जी, तीन। मुझे नहीं पता आपको किसने ये झूठ हजम करवा दिया है, बाइबल मुकद्दस तीन आसमानों के बारे में शहादत देती है और पालूस रसूल इसके बारे में कहता है मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया। दूसरा ग्रंथियों 12 बाब उसकी पहली 4 आयत, सो कब्रें खुल गई, बहुत से मुकद्दसीन के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर को गए और बथेरों को दिखाई दिए। इसके साथ आप इफिसियों 4 बाप उसकी 8 आयत को पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस उसका 3 बाप उसकी 5 और 6 और 7 आयत को पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर यहूदा के खत को पढ़ सकते हैं। ये तमाम क्या है, वो शहादतें हैं, किस लिए लिखी गई कि हम इस बात पर मुत्तफिक ना रहें कि अब कोई आलमे रवा में जाएगा और उसके लिए गोश्त तैयार करना होगा। आज जो खाना तैयार किया गया है ये यासर की रूह की रहाई के लिए नहीं है, मैं आपको वाजह बताना चाहता हूं, जो फल दिया जाता है वो रहाई के लिए नहीं है, जो कुछ भी किया जाता है वो रहाई के लिए नहीं है। इस सोच से हमें बाहर निकलना होगा क्योंकि सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बनी हुई इंसान का कफारा नहीं बल्कि किससे है जी, यीशु मसीह के कफारे से। अगर हम उसके इनकारी हैं तो चाहे मैं पूरा अमरीका लूट लूं और अफ्रीका मेरा हो जाए, मैं किसी जिंदगी को बचा नहीं सकता अगर मेरा पैगाम ये नहीं कि सलीब के बगैर कोई भी निजात पा नहीं सकता। तो ये थी जी आलम रवा। अब आलम रवा जमीन के नीचे है, लेकिन आलम बाबा आलम बाला कहां पर है जी? आसमान पर। तो जब कोई मरता है तो क्या होता है? अब्रानियों का मुसन्नफ इसके बारे में बयान करता है कि कौन क्या वहां पर देखता है। ये सच मुझे हाल ही में सीखने को मिला, ये राज मुझ पर हाल ही में पोशीदा था, खोला गया और खुदा ने मुझे सिखाया। अब्रानियों 12 बाब देखें कि जब कोई मरता है तो वो क्या देखता है। जब वो यहां से रुखसत होता है तो फरिश्ते अब उसे कहां पर लेकर जाते हैं? अब्रानियों 12 बाब। यहां पर अब्रानियों का मुसन्नफ, बहुत से लोग कहते हैं, पता नहीं, मैं से यकीन करता हूं कि ये पालूस रसूल है, क्योंकि 600 से ज्यादा जुमले बयान मिलते हैं कि उसका मुसन्नफ पालूस रसूल है। अब्रानियों 12 बाब जब हम उसकी 18वीं आयत से 29वीं आयत तक पढ़ते हैं तो आपको पूरी तस्वीर मिलती है, लेकिन मैं आपके लिए 22वीं आयत से पढ़ूंगा। बल्कि तुम सेहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर, जैसे जमीन पर शहर है वहां आसमान पर भी क्या है जी? शहर है। यीशु मसीह ने वैसे ही नहीं कह दिया था कि जो कोई टैलेंट या जो कोई तुमको दिया गया है उससे जाकर कारोबार करो, किसी को क्या मिलेगा जी? जिसको 5 तोड़े मिले उससे कहा कि तूने कितने कमाए हैं जी? मैंने 10। तू जाकर क्या कर जी? 10 शहरों पर हुक्मरानी कर। सो आसमान का शहर क्या है जी? हकीकी है। वहां पर लोगों को उनके कामों के मुआफिक बदला मिलेगा। सवाल यह है कि क्या हमें शहर मिलेगा या फिर हम 30-35 मील दूर खड़े होकर अपने मनजी को देखेंगे? जो नेकी, जो भला, जो भलाई, जो सब काम हम इस जमीन पर करेंगे वो निजात के लिए नहीं, बल्कि हमारा अजर और आसमानी बादशाही में हमें क्या मिलेगा? उसका बदला मिलेगा। और आगे क्या लिखा है? आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्ते। जब कोई ईमानदार खुदा के आसमानी यरूशलेम में जाता है तो वहां पर बहुत से ईमानदार कहते हैं उसको खुशामदीद, पंजाबी में जी आया नू, वेलकम होम। एक मिशनरी अफ्रीका में उसने बहुत ज्यादा खिदमत की और उसी जहाज पर वो 23 साल खिदमत करने के बाद बीमारी में मुब्तला उस वायरस से जो उसे अफ्रीका में मिला, उसने हजारों लाखों रूहों को बचाया यीशु की मनादी करके। वो और उसकी बीवी वापस आ रहे हैं और उसी पानी के जहाज पर एक बहुत ही फेमस अमरीका का खिलाड़ी आ रहा था। तो क्या हुआ? जब वो जहाज से उतरे तो सब उनको धक्का देकर पीछे कर दिया और उस मशहूर बंदे को हाथ डालना शुरू कर दिए, उन पे फूल फेंकना शुरू कर दिए, नारे लगाना शुरू कर दिए कि ये मैच जीत कर आया है। तो मिशनरी उसे देखकर अपनी बीवी को आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है कि हमने खुदावंद की इतनी खिदमत की, हमें कोई भी वेलकम करने वाला यहां पर मौजूद नहीं है। उसकी बीवी ने अपने खावन की तरफ देखकर कहा कि अभी तक हम घर नहीं हैं, जब घर पहुंचेंगे तो लाखों फरिश्तगान हमें इस्तकबाल करेंगे। और ये बात, ये तजर्बा इसीलिए लिखा गया है कि जब कोई ईमानदार आसमानी शहर में जाता है तो पतरस कहता है खुशामदीद, पालूस कहता है तूने दौड़ तो खत्म कर लिया, फिर तोमा कहता है हाँ तूने शक मेरी तरह किया लेकिन तू साबित कदम रहा, पालूस के साथ साथ फिर दाऊद कहता है तूने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, और फिर मूसा कहता है कि तू ईमान में कायम रहा और तूने खुदावन का पल्ला नहीं छोड़ा। सो लाखों फरिश्तगान क्या करते हैं जी? ईमानदार की रूह को वेलकम कहते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है 23वीं आयत में? और उन पलोठों की जमात और उन पैलोटों की आम जमात यानी कलीसिया जिसके नाम आसमान पर लिखे गए हैं। फिर बहुत से ईमानदार जो मुझसे पहले पासबान या मेरे जानने वाले चले गए हैं, जब मैं इस बदन को छोड़कर आसमान पर जाऊंगा तो वो मुझसे कहेंगे, जी आयानो, वेलकम होम पादरी फैसल, तूने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया। तो ये है नजारा जो लिखा गया है आसमानी माहौल का। आसमान का शहर है, उस शहर में लाखों फरिश्तगान ईमानदारों को वेलकम कहते हैं, और बहुत से पिलोटों से मुराद ये है। ये नहीं कि जो पहला बेटा पैदा हो गया वही पिलोटा है। यीशु मसीह इसलिए पिलोटा कहलाया क्योंकि वो जितने मरे उन सब में से मरने वालों में से वाहद पिलोटा है जो अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस पिलोटे की क्या करेंगे जी, नक्शे कदम पर बहुत से उसके बंदे और बंदियां मुर्दों में से जी उठेंगे। इसीलिए लिखा गया है कि पहले पिलोटों की आम जमात यानी कलीसिया जिन पर आलम रवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे। और उसके बाद लिखा है पहले फरिश्तगान मिलते हैं, फिर पतरस, पालूस, रसूल, फिर तोमा, फिर एलिया, फिर मूसा, फिर हाबल, फिर हनूक, फिर और बहुत से लोग जिनको आपने पढ़ा है वो आपसे मिलेंगे। हालत क्या है कि अगर हम यीशु के कफारे पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं पहले पहुंचूं तो मैं सबसे पहले पालूस रसूल से बात करूं और उससे सवालों जवाब करूं, क्योंकि वहां पर बहुत से सवालों का भेद बयान किया जाएगा। सो फरिश्तों के बाद ईमानदार, ईमानदार को आसमान पर कहते हैं जी वेलकम, और उसके बाद क्या होता है, और सबका मनसब खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहों का खुदा फिर कहता है, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे वफादार नौकर, शाबाश। आखिर पर खुदा अपने बाजू फैलाए हुए ईमानदार को अपने गले लगाता है कि तूने अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारा, तूने अपनी दौड़ को सही तरीके से खत्म किया। और आखिर में क्या देखते हैं, 24वीं आयत में लिखा है, और बे अहद के दरमियानी यीशु मसीह, वो दरमियानी वो वकील है जो पुराने और नए को एक करके हम सबका वकील बन जाता है। और वो कहता है, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आखिर में हम यीशु को देखते हैं, यीशु को देखते हैं जैसे तोमा उसको देखने के लिए कहता था कि मैं तेरे जब तक उन जख्मों को भी अपनी उंगलियां ना डाल लूं यकीन ना करूंगा। हम यीशु को जैसा वो है वैसा ही इस वक्त देखेंगे जब उसके रूबरू होंगे। सो मौत के बाद अब कोई ईमानदार आलम रवा में नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, अगर कोई आपको कहे कि जी देसी घी की 5 किलो की बाल्टी और उसके साथ एक बकरा और आपका जो महरूम है उसको सुकून मिलेगा, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा उसके शगीर्द गलील की झील पर, जब मैं वहां पर खड़ा था तो वहां पर मुझे सीखने को मिला, यीशु ने कहा कि रूह का गोश्त और खून नहीं होता, रूह को कैसे खाना खिला सकते हैं। आपको बहुत से पखंडी बाबे मिलेंगे जो कहेंगे जी बकरा दो और आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, रूह ने बकरा खाना है। यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शिगिर्दों को कहा था कि मैं भूत नहीं, मुझसे ना डरो, और वो मछली खा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा मुझे दो, और जब उसने खाई तो उसने कहा कि रूह का खून और गोश्त और बदन नहीं होता, मैं वही हूं जो मैंने तुमसे बातें कही थी कि मैं अपने कहे के मुताबिक दुख उठाऊंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु मसीह से मुलाकात होगी रूबरू, सो ये दो पहलू आप तक पहुंचाना चाहता था कि आलम रवा वो जगह है जहां पर गैर ईमानदारों की रूहें तड़पती है, वहां पर आग नहीं बुझती, वहां पर कीड़ा जो है वो नहीं मरता, वहां पर अजाब है जो वो खत्म नहीं होता, वहां पर इतना अंधेरा है कि खुदा की हजूरी और मौजूदगी का कोई एहसास नहीं, और अजाब ऐसी जगह है कि अगर एक मिलियन सेकंड को लाख मिलियन दफा किया जाए तो उसका हिसाब इस तरह बनता है कि बंदा बार 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 उस हलाकत में अपनी अब्दियत गुजारता है। कोई भी नहीं चाहता कि हलाकत की इस जगह पर जाए, हम सब चाहते हैं कि आलमे बाला पर जाएं, और वो जगह कौन सी है जी, जहां पर ना रोना, ना दांतों का पीसना, और ना फिर बदन का मरना, और ना फिर रूह का अजाब है। सो आज हासिल कलाम क्या है? मैंने कल कहा था कि यासर की जिंदगी से खुदावंद खुदा तू लोगों को तकवीयत कर, मलामत कर, हौसला बढ़ा के वो अपनी बुरी राहों से फिरें। जैसे आज तक खुदा हाबल के मर जाने के बाद फिर उसकी मौत के बायस कलाम कर रहा है, हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस बात से याद किए जाएंगे। जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो लोग किन लफ्जों से हमें याद करेंगे? जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे क्या हमारी याद काबले याद होगी कि कोई हमारे बारे में बात करे? इसलिए कल मैंने कहा था कि हम मरे तो मसीह में, जिए तो मसीह के लिए, मरे तो शेरे बब्बर की तरह दलेरी के साथ उसके जलाल के लिए मरे, ना कि अपनी जिंदगी को जाया करें। इसलिए हम सब की जिंदगी में ये एक बात खुदा पूछेगा कि जो निहमते बरकते मैंने तुमको दी उनको तुमने जमीन पर कैसे खर्च किया। सो इस बात पर गौर करें और आए हम खुदा के हजूर झुके कि खुदावन खुदा हम सबको कि हम आलमे रवा के इस सच से वाकिफ होकर आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहें जहां पर मसीह मौजूद है और जहां पर मसीह बैठा हुआ है खुदा के दाहिने हाथ, और जब कोई मरता है तो वो फरिश्तगान को, उसके बाद फिर कलीसिया जो हमसे पहले सो गए हैं उनको, फिर खुदावन खुदा के खुदावन खुदा को, और उसके बाद उसके मसीह हमारे मनजी यीशु मसीह को जो हमारा मुंतजर होता है। इसलिए हमारी जिंदगी उसमें पोशीदा है, उस पोशीदगी के राज को जानने की कोशिश करें कि खुदावन मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहती, जाया नहीं करना चाहता। खुदावन मेरी दुआ है कि कैरी का वो सवाल आज बथेरों के लिए जवाब बना होगा कि आसमान पर फरिश्तगान और 24 बुजुर्ग और वो पलोठों की जमात 2400 घंटे तेरे हजूर तुझे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं, कहते हैं कि हम्द सताइश प्रस्तुति तमजीद खुदा के बर्रे की है जिसने आसमान और जमीन को बनाया और जिसके वसीला से जिंदगी जारी होती है। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको अपनी जिंदगियों पर गौर करना सिखा कि तूने हम सब के लिए दोजख के दरवाजे बंद कर दिए यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस हयात और जन्नत अल फरदौस के दरवाजे खोल दिए, हम तेरे बेटे का चुनाव करें और उसमें जिंदगी बसर करें। और खुदावंद आज सबको बड़ी बरकत दे, और अपनी बहन निगत के लिए खुदावन तेरा इत्मीनान तेरी तसल्ली चाहता हूं कि उसका दुल्हा उस दुल्हे के पास है जो सबका कफारा देने वाला है। खुदावन आज का कलाम कहरी के लिए इत्मीनान हो कि उसका बाप आलमे रवा में नहीं बल्कि आलमे बाला में है, और उसकी वजह एक ही है कि जो कोई यस्सु पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि सो जाता है और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है। खुदावन सारे ख़ानदान को, तमाम लोगों को बरकत दे, और अगर कोई किसी मुश्किल में, जो बुरी आदत में पड़ा हुआ है, खुदावन पाकिस्तान की कलीसिया के ईमानदारों को, नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को खुदावंद अपने स्टिफनेस बनाकर इस्तेमाल कर, अपना दाऊद बनाकर इस्तेमाल कर, अपना मूसा बनाकर इस्तेमाल कर, अपना पालूस बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि आरवाला की कलीसिया और पाकिस्तान में जहां कहीं भी तेरा बदन खुदावंद बसा हुआ है, वो खुदावंद खुदा इस दुनिया का नूर बनकर इस्तेमाल हो, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ।